नमस्कार भारत 29 जून दिन गुरुवार, मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। केंद्र सरकार ने शुरू की सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया में हिस्सेदारी बेचने की तैयारी। वित्त मंत्री के नेतृत्व में एक ग्रुप लेगा सभी फैसले।
कितना डिसइन्वेस्ट होगा, किस प्रक्रिया के माध्यम से होगा, उसके एसेट्स के संबंध में, उसके डेट के संबंध में, ये सारी जो प्रक्रिया और निर्णय है ये अब ग्रुप लेगा।
सपा नेता आजम खान के सैनिकों पर दिए बयान को लेकर विवाद, आजम खान ने दी सफाई। और जब परिवार के अपने ही छोड़ दे तो जीवन की संध्या में उजाला कहाँ ढूंढे बुजुर्ग।
अब तो यही आस लगावे परमात्मा से, हर नौजवान को ऐसी शिक्षा दे भगवान, अब जो ये कहे माँ तू कैसी है, अब तुझे क्या चाहिए।
सुनिएगा इस पर खास रिपोर्ट, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। कर्ज में डूबी एयर इंडिया के विनिवेश के प्रस्ताव को सैद्धांतिक तौर पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि एयर इंडिया के विनिवेश के तौर तरीकों के बारे में निर्णय के लिए मंत्रियों का एक समूह गठित किया जाएगा। देश के भीतर आने वाली उड़ानों के लिए अमेरिका कड़े सुरक्षा उपाय लागू करने जा रहा है। गृह मंत्री जॉन केली ने कहा है कि कड़े कदम उठाना जरूरी है क्योंकि अमेरिका के दुश्मन लगातार विमानों पर हमले करने के नए तरीके खोज रहे हैं। जो नए उपाय लागू किए जाएंगे उनमें यात्रियों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की स्क्रीनिंग बढ़ाई जाएगी और साथ ही विमानों और हवाई अड्डों के लिए भी कड़े सुरक्षा मानक तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा,
With this announcement, we send a clear message that inaction is not an option. Those who choose not to cooperate or are slow to adopt these measures could be...
इस घोषणा के साथ हम साफ तौर पर यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारे लिए हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना कोई विकल्प नहीं है। जो इस मामले में सहयोग नहीं करना चाहते, इनको अपनाने में वक्त लेना चाहते हैं, उन पर अन्य प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जिसमें विमान में इलेक्ट्रॉनिक सामान लाने संबंधी बैन हो सकता है या अमरीका की ओर आ रहे उनके उड़ानों को निलंबित भी किया जा सकता है। अमरीकी गृह मंत्री जॉन केली के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। वेनेजुएला के सुरक्षा बलों का कहना है कि वो उस पुलिस अधिकारी की तलाश कर रहे हैं जिन्होंने मंगलवार को हेलीकॉप्टर से सरकारी इमारतों के ऊपर ग्रेनेड फेंके थे और उन पर गोलियां चलाई थीं। आर्थिक संकट से जूझ रहे वेनेजुएला में बीते कई महीनों से प्रदर्शन जारी हैं और लोग आम चुनावों की मांग कर रहे हैं। देश के विदेश मंत्री सैमुएल मोनकादा ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप समझें कि वेनेजुएला के विरुद्ध साजिश चल रही है और इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है ये जो हम देख रहे हैं। मैं वेनेजुएला के लोगों की, महिलाओं की और बच्चों की चिंता नहीं कर रहा, लेकिन जब एक व्यक्ति खुद को भगवान का योद्धा कहता है और राजधानी में हेलीकॉप्टर से ग्रेनेड फेंकता है और फिर भाग जाता है, तब भी उन्हें घटनाओं का एहसास नहीं होता। देश के विदेश मंत्री सैमुएल मोनकादा के शब्द। बजट में कटौती के कारण ब्राज़ील के अधिकारियों ने पासपोर्ट जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। आमतौर पर फेडरल पुलिस आवेदन को स्वीकार किए जाने के 6 दिन के भीतर पासपोर्ट जारी करती है, लेकिन उनका कहना है कि अब वो मंगलवार के बाद किए गए आवेदन स्वीकार नहीं कर सकेगी। बजट में कटौती के लिए ब्राज़ील के एक अभियोक्ता ने राष्ट्रपति माइकल टेमेयर को जिम्मेदार ठहराया है। देश फिलहाल इस दशक की सबसे बुरी आर्थिक तंगी के समय से गुजर रहा है और सरकार का कहना है कि वो इस सप्ताह संसद में होने वाली चर्चा में इस संबंध में एक आपात बिल पेश करेगी ताकि इस काम के लिए तुरंत कुछ धन मुहैया कराया जा सके। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस का कहना है कि वो वेटिकन के एक वरिष्ठ सदस्य कार्डिनल जॉर्ज पेल पर बच्चों के साथ यौन हिंसा के आरोप लगाए गए हैं। उन पर एक से अधिक बच्चों के यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। कार्डिनल पेल ऑस्ट्रेलिया में सबसे वरिष्ठ रोमन कैथोलिक हैं और वेटिकन के वित्त विभाग का उत्तरदायित्व भी संभालते हैं। लीबिया से मिल रही खबरों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों को ले जा रहे एक काफिले पर ऑटोमेटिक हथियारों और रॉकेट लॉन्चरों से लैस बंदूकधारियों ने हमला किया है। हमले में संयुक्त राष्ट्र के 7 कर्मचारियों को बंधक बना लिया गया था। ये काफिला प्रवासियों के एक शिविर का दौरा करने के लिए आया था और हमले के वक्त पश्चिमी शहर सुरमन से राजधानी त्रिपोली की ओर जा रहा था। बीबीसी समाचार।
आज है 29 जून दिन गुरुवार। आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत और मेरा नाम है पंकज प्रियदर्शी। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं लाइव। नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया के विनिवेश की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने एयर इंडिया के विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि इसके आगे की प्रक्रिया के लिए एक पैनल बनाया जाएगा। अरुण जेटली ने कहा,
सिविल एविएशन मंत्रालय का एक प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के सामने आया जिसमें एयर इंडिया की डिसइन्वेस्टमेंट को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दी गई, इन प्रिंसिपल अप्रूवल। और सिविल एविएशन मंत्रालय की जो प्रस्तावना थी कि फाइनेंस मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक ग्रुप बने जो इसकी बाकी सारी मोडालिटीज को तय करे, उसको स्वीकार किया गया। कितना डिसइन्वेस्ट होगा, किस प्रक्रिया के माध्यम से होगा, उसके एसेट्स के संबंध में, उसके डेट के संबंध में, होटल कंपनीज के संबंध में, ये सारी जो प्रक्रिया और निर्णय है ये अब ग्रुप लेगा।
एयर इंडिया का घाटा लगातार बढ़ रहा है और सरकार से लगातार आर्थिक सहयोग मिलने के बावजूद कंपनी का घाटा काबू में नहीं आ रहा है। एयरलाइन पर 52,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और पूर्व यूपीए की सरकार ने 2012 में उसे 30,000 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराई थी, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं आया है। हमारी सहयोगी हरिता कांडपाल ने इंडियन एयरलाइंस के जनसंपर्क विभाग के पूर्व जनरल मैनेजर अशोक शर्मा से संपर्क किया और पूछा कि क्या ये एयर इंडिया के विनिवेश के लिए उचित समय है।
जरूरी था, इसमें कोई शक नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट जरूरी है एयर इंडिया के लिए। किस शेप में होगा, किस हद तक होगा, वो कहना बड़ा मुश्किल है अभी इस समय। बाकी देखना पड़ेगा कि किस शेप में ये लोग इसका विनिवेश करने वाले हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। नीति आयोग का अपना कहना है कि फुल प्राइवेटाइजेशन हो जाना चाहिए। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट मेजोरिटी अगर अभी भी मेंटेन करेगी सरकार, तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ बहुत बायर्स आएंगे, क्योंकि उनको सबको इंडिपेंडेंस चाहिए और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के साथ तो बड़ा मुश्किल होगा। गवर्नमेंट का अगर मान लो मेजोरिटी शेयर अभी भी रहेगा तो थोड़ा मुश्किल होगा। 17% मार्केट शेयर के साथ इस समय हालत एयर इंडिया की सचमुच काफ़ी ख़राब है और इसके लिए कंपनी का तो मैनेजमेंट तो है ही, लेकिन कंपनी के ऊपर दबाव जिस टाइप का सरकार की तरफ से रहा है, जो भी सरकार थी जिस समय भी था, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस जिस टाइप का रहा है, इसमें रूट रैशनलाइजेशन और लेवल प्लेइंग फील्ड वगैरह जो नहीं मिल पा रहे थे एयर इंडिया को, इंडियन एयरलाइंस को, दोनों को ही, उसका एक बहुत बड़ा मेजर रोल रहा है इसमें।
एयर इंडिया पर 50,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, ये भी तो एक अड़चन साबित होगा इस सरकार के लिए अपना हिस्सा बेचने में।
यदि हम बात करें मान लो इस समय अगर मान लो डिसइन्वेस्टमेंट करते भी हैं, तो जिस टाइप के कैपिटल लोन, वर्किंग कैपिटल लोन्स हैं 50-52 हज़ार के जो हैं, उसके साथ कोई भी कंपनी, कोई भी बायर इसको लेने के लिए तैयार नहीं होगा जब तक उसको वर्किंग कैपिटल की अगर ऊपर भी अगर लोन इस टाइप का बर्डन है, उसके साथ बड़ा मुश्किल होगा किसी का भी लेना। तो मेरा तो ये विचार है कि जब तक किसी ऐसी कंपनी को ना दिया जाए और जब तक ये राइट ऑफ नहीं करेंगे डेट इक्विटी लोन्स को, तब तक कोई भी बायर इस स्टेज का आने के लिए तैयार होना मुश्किल लग रहा है।
तो क्या ये समझे कि सरकार के लिए काफी मुश्किल होने जा रहा है?
आसान तो नहीं होगा, इसमें कोई शक नहीं है, आसान नहीं होगा, लेकिन जरूरी है इस समय, क्योंकि जो हालत चल रही कब तक चलेगा ऐसे मुझे बताइए। गवर्नमेंट भी अगर सपोर्ट करती रहेगी, 30,000 करोड़ का यूपीए गवर्नमेंट ने किया था, उसके बावजूद भी हालात में तो कोई सुधार नहीं आया ना। तो हालात में सुधार इसलिए भी नहीं आ पा रहा है कि वो कुछ एक लाइबिलिटीज जो पिछली सरकार की या किसी भी सरकार की दी हुई हैं, उनसे भी नहीं उबर पा रहे हैं हम लोग। जैसे रूट रैशनलाइजेशन होता था उस समय, या बायलेटरल्स थे एयर इंडिया के, उनमें भी बहुत ठीक ठाक नहीं रहा है, जो मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं थी उसमें भी। तो वो भी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये स्टेज पहुंची है आज एयर इंडिया की।
टाटा कंपनी ने दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन कुछ शर्तें भी हैं और कुछ संशय भी है।
सरकार का जो ये निर्णय है, इसमें कोई कोताही नहीं है, किसी को भी किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी की हालत चल रही है उसके हिसाब से जरूरी हो गया इस समय ये। लेकिन हाँ, अगर टाटा जैसी कंपनी अगर इसको टेक ओवर करेगी तो ही चल पाएगी, मेरे को नहीं लगता कि और किसी कंपनी के बस का होगा। लेकिन टाटा ने शर्त रखी है कि वो लोग जो डेट इक्विटी लोन है उसको राइट ऑफ करना चाहेंगे। कोई भी कंपनी 50,000 के लोन के साथ तो कोई भी 50,000 के बर्डन के साथ तो कोई भी नहीं खरीदना चाहेगा।
कल ही केंद्रीय कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग में उच्च भत्तों की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। इससे केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और सैन्य कर्मियों को लाभ मिलेगा। शहरों के हिसाब से बेसिक तनख्वाह का 24%, 16% और 8% बतौर एचआर मिलेगा। एचआरए 5,400 रुपये, 3,600 रुपये और 1,800 रुपये से कम नहीं होगा। सियाचिन की ड्यूटी में लगे सैनिकों का भत्ता 14,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति महीना कर दिया गया है। जोखिम वाली जगहों पर और कठिन ड्यूटी पर तैनात ऑफिसरों को मिलने वाले भत्तों में भी बढ़ोतरी की गई है। अब इन्हें हर महीने 21,000 रुपये के बदले 42,500 रुपये का भत्ता मिलेगा। पेंशन भोगियों को तय मेडिकल भत्ता 500 के बदले 1,000 रुपया मिलेगा। युद्ध में 100% विकलांग होने के बाद मिलने वाले भत्तों को भी बढ़ाकर 4,800 रुपये से 7,200 रुपये कर दिया गया है। ऑपरेशन थिएटर भत्ता भी अब हर महीने 360 रुपये के बजाय 540 रुपये मिलेगा। पेशेंट केयर भत्ता को भी अब हर महीने 2,070 रुपये से बढ़ाकर 4,100, 2,100 से बढ़ाकर 5,300 कर दिया गया है।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
2 साल पहले उत्तर प्रदेश के दादरी में गोमांस रखने के शक में अखलाक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई और हाल ही में ईद से पहले बल्लभगढ़ के जुनैद को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। राजस्थान में पहलू खान की हत्या हुई और झारखंड में भी भीड़ के उन्माद में कई लोग शिकार हो चुके हैं। कल इन घटनाओं के विरोध में देश के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतरे। हरिता कांडपाल की रिपोर्ट।
नॉट इन माई नेम, ये मेरा हिंदुस्तान नहीं है, ये आवाजें और ये विचार कल भारत के कई शहरों की सड़कों पर गूंज रहे थे। किस हिंदुस्तान से नाराजगी जताने के लिए हिंदुस्तान के कई शहरों की सड़कों पर ये लोग उतरे। ये वो हिंदुस्तान है जिसके चेहरे पर पहलू खान, अखलाक और जुनैद जैसे कई लोगों की भीड़ के हाथों हुई हत्याओं के दाग लग चुके हैं। बल्लभगढ़ के 16 साल के जुनैद ईद की खरीदारी कर ट्रेन से घर लौट रहे थे, लेकिन वो ईद मनाने के लिए अपने परिवार के पास नहीं पहुंच सके। ट्रेन में ही भीड़ ने पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी। पहलू खान और अखलाक की भी कुछ इसी तरह की कहानियां हैं। लोगों के मन में चिंता और सवाल और नाराजगी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर इन्हीं सवालों के साथ कई लोग जमा हुए।
जो भी इस वक्त पूरे देश में हो रहा है और राज्य के नेतृत्व में हो रहा है और पूरी ताकत से हो रहा है, तो उसके खिलाफ विरोध में खड़े हैं हम लोग।
आइडेंटिटी को लेकर ही तो लड़ रहे हैं और वो जो आइडेंटिटी, फेक आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देश सिर्फ एक ही वर्ग का है, एक ही समाज का है, उसके खिलाफ हम खड़े हैं कि ये देश एक वर्ग का नहीं है, एक समाज का नहीं है, हम सबका है, सारे सारे लोगों का है और हम इस देश के लिए खड़े हैं।
सोशल मीडिया वेबसाइट पर एक फिल्मकार सबा दीवान ने जुनैद की हत्या के विरोध में एक कड़ी शुरू की और वो सोशल मीडिया के जरिए देश के कई शहरों के लोगों तक पहुंची। नॉट इन माई नेम के नाम से लिंचिंग के खिलाफ शुरू हुई इस मुहिम में हजारों लोग जुड़ चुके हैं। कई शहरों में इस मुहिम से जुड़े लोग कल शाम जमा हुए।
ये कुछ दिनों में, कुछ महीनों में शहरों में पहुंचेगा, छोटे शहरों में पहुंचेगा और ये इस लेवल तक पहुंचेगा कि ये अरब स्प्रिंग तक को हिला देगा। बिकॉज ये हिंदुस्तान है, यहाँ की आवाम कोई 5-10 करोड़ अरब के बराबर नहीं है, 125 करोड़ लोग है, ये इनकी आवाजें हैं।
बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई एक महिला संध्या कहती हैं,
ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे हम सब उसमें लिपटाए जाएंगे, है ना।
लोगों के मन में सवाल है, चिंता है कि आखिर सरकार और नेता क्यों चुप हैं?
कहीं ना कहीं सभी के अंदर थोड़ी सी नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके, तो वो सबको एक्नॉलेज करना चाहिए। बट अगेन एज फार एज द गवर्नमेंट इज कंसर्न, दे शुड रियली इंस्टेड ऑफ आई थिंक टॉकिंग अबाउट रिमोट इंसिडेंट्स हैपनिंग इन कंट्रीज दैट हैव गॉट नथिंग टू डू विद इंडिया, दे कैन एटलीस्ट एक्नॉलेज व्हाट इज हैपनिंग इन देयर ओन कंट्री।
मॉब लिंचिंग के खिलाफ दिल्ली और देश के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतरे। हालांकि हरियाणा की घटना पर बीजेपी सरकार ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने भी घटना को शर्मनाक कहा है। और अब चर्चा करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने। की। आजम खान के सेना पर दिए गए एक बयान से राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। आजम खान के बयान की जहां भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी निंदा की है, वहीं समाजवादी पार्टी भी उनका बचाव करने से कतरा रही है। हालांकि खुद आजम खान ने बाद में एक बयान जारी करके अपनी सफाई दी। सुनिए लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
महिला दहशतगर्दों ने फौज के प्राइवेट पार्ट्स को काट कर साथ ले गए। उन्हें हाथ से शिकायत नहीं थी, सर से नहीं थी, पैर से नहीं थी, जिस्म के जिस हिस्से से उन्हें शिकायत थी वो उसे काट कर ले गए। ये इतना बड़ा संदेश है जिस पर पूरे हिंदुस्तान।
रामपुर में आजम खान ने कुछ ऐसा ही कहा जिसने न सिर्फ राजनीतिक हलचल पैदा कर दी बल्कि खुद आजम खान को स्पष्टीकरण देने पर विवश कर दिया। आजम खान के इस बयान को सोशल मीडिया पर सेना और सैनिकों के अपमान के रूप में पेश किया गया और कहा गया कि आजम खान सैनिकों पर रेप का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि अपने स्पष्टीकरण में आजम खान ने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जैसा बताया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मामले में काफी तल्ख दिखी। बीजेपी के राज्य प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की प्रतिक्रिया से इस तल्खी को साफ समझा जा सकता है।
आजम खान इस तरह की बदजुबानी के लिए पहले ही कुख्यात रहे हैं। वो जब जब अपने आप को आइसोलेशन में महसूस करते हैं, उपेक्षित महसूस करते हैं राजनीति में, तो सुर्खियां बटोरने के लिए इस प्रकार की घटिया और वाहियात बयान देते रहे हैं। लेकिन जिस तरह का बयान उन्होंने सेना को लेकर के अभी दिया है, उसको भारत का जनमानस सुनने और सहने के लिए तैयार नहीं है। आजम खान के इस बयान ने न केवल सेना के मनोबल को गिराया है बल्कि आम भारतीय के आक्रोश को बढ़ावा दिया है। आजम खान के इस घटिया बयान की भारतीय जनता पार्टी कठोर शब्दों में निंदा करती है और समाजवादी पार्टी उनको तुरंत निष्कासित करे और भारतीय राजनीति में ये इतिहास के पन्नों में सिमट जाए कि आजम खान को नेता हुआ करते थे।
उधर आजम खान का कहना है कि उन्होंने सिर्फ कुछ अखबारों में छपी खबरों का हवाला दिया, लेकिन उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। आजम खान ने ये बात रामपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में कही और उनके इस बयान का वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया। अपनी सफाई में आजम खान ने कहा है कि उन्होंने कभी सेना का मनोबल तोड़ने की बात नहीं की। आजम खान से इस्तीफा मांगने की बीजेपी की मांग पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी को अपने नेताओं की जबान पर नियंत्रण लगाना चाहिए। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह कहती हैं,
आजम साहब ने खुद अपने बयान पे क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो उन्होंने किस रेफरेंस में बयान को दिया था और इसका मतलब क्या है, और वो देशभक्त है, भारतवर्ष के लिए पूरी तरह समर्पित है। जो लोग उनको ले रहे हैं टारगेट पर, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या महेश शर्मा जी ने कोई एक्सप्लेनेशन दिया था जब वो दादरी में जो लिंचिंग हुई थी उसके अभियुक्त के पास डेथ में पूरा श्रद्धांजलि देने गए थे, या वीके सिंह ने कोई आज तक खंडन भी नहीं किया है। खट्टर साहब का भी बहुत सारा बयान आया है।
बहरहाल जानकारों का कहना है कि समाजवादी पार्टी की सफाई और आजम खान के स्पष्टीकरण के बावजूद लगता नहीं कि यह मामला इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
राजस्थान में उस रिक्शा चालक बबलू की मौत हो गई है जो कभी अपनी नवजात बेटी दामिनी को सीने से चिपका कर रिक्शा चलाते हुए सुर्खियों में आया था। दामिनी 5 साल की हो चुकी हैं और भरतपुर के बाल संरक्षण गृह में हैं। दामिनी के लिए दुनिया भर से 23 लाख रुपए की मदद पहुंची थी। फिलहाल बाल कल्याण समिति दामिनी की परवरिश कर रही है। नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
उसकी आंखों में बेटी के लिए सुनहरे ख्वाबों का बसेरा था, लेकिन गुमनामी के अंधेरों में जिंदगी बसर कर रहे बबलू ने भरतपुर में दम तोड़ दिया। उसकी मौत की खबर भी तब मिली जब शव से बदबू आने लगी थी। दामिनी जब पैदा हुई सर से माँ का साया उठ गया, अब पिता भी नहीं रहे। दामिनी की माँ चल बसी तो बबलू ने बाहों का झूला बनाया और रिक्शा चलाते उस नवजात को गले में लटका कर घूमता रहा। बीबीसी पर जब उसकी यह कहानी प्रसारित हुई तो दुनिया भर से मदद के लिए हाथ उठे, लेकिन कोई हाथ खाली नहीं था। देखते देखते कोई 18 लाख रुपए जमा हो गए। अब यही राशि 23 लाख रुपए तक जा पहुंची है। भरतपुर जिला प्रशासन की एक समिति उसकी देखभाल कर रही है। इस समिति के एक सदस्य डॉक्टर बी एम भारद्वाज ने बीबीसी को बताया कि दामिनी की पूरी देखभाल की जा रही है।
भविष्य तो उज्जवल ही होगा क्योंकि वो सही हाथों में है, गवर्नमेंट के होम में है, और उसके बाद अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कलेक्टर साहब से मिलना है कि सही प्राइवेट रूप से पढ़ाने की व्यवस्था की जाए, कि संसाधनों की तो कोई कमी नहीं है, केवल सोच और देनी है जिससे इसका भविष्य बेहतर हो सके। उसको कभी ऐसा न लगे कि हमारे फादर नहीं संसाधन थे तो देखभाल प्रॉपर। मुझे नहीं लगता कि कोई महीना ऐसा जाता होगा जिससे मैं कॉल नहीं आते होंगे, और कल से मेरे ख्याल से 30-40 कॉल आ चुकी है। बाहर से ज्यादा आती है, इंडिया से तो कम आती है।
दामिनी भरतपुर के शिशु गृह में है। शिशु गृह के अधीक्षक राजेंद्र शर्मा कहते हैं,
अपन बच्चे की जो परवरिश है वो उसी प्रकार से सुनिश्चित करते हैं जिस प्रकार से अपने परिवार के एक बच्चे की करते हैं। जो अपना बच्चा होता है उसी प्रकार से उसको समय से यदि कोई दवाई की आवश्यकता है तो दवाई या पोषण शिक्षा सारी व्यवस्था है उसको उसी प्रकार से रखी जाती है। पिता के बारे में कभी समझते ही नहीं, एक्चुअली भी क्या है वो बहुत छोटी एक दो पाँच सात दिन की यहाँ आ गई थी और उसके बाद से ही उसने कभी पिता को ना तो देखा ना उसके बारे में उसने सुना ना समझा। कभी अच्छा बोलती है और वास्तव में खुशी तो होती है जब बच्चे गले से एकदम लिपटते हुए जाते के साथ ही। तब
उस नन्ही जान को तो यह भी नहीं मालूम कि उसके पिता अब दुनिया में नहीं है। कोई 2 साल पहले एक व्यक्ति ने दामिनी के नाम जमा रकम के फेर में उसका अपहरण कर लिया था, लेकिन पुलिस ने उसे तुरंत मुक्त करा लिया। बेटों की चाहत के किस्से तो बहुत है, लेकिन यह उस बेटी की मदद में उठते हाथों की दास्तान है जिसे माँ का आंचल नसीब नहीं हुआ और अब पिता भी चल बसे। लेकिन दामिनी के लिए तो इंसानियत दामन फैलाए खड़ी है। नारायण बारेठ, जयपुर, राजस्थान।
और अब समय है अखबारों की समीक्षा का, मानसी दास के साथ। जी मानसी,
जीएसटी को लागू करना सुपर इमरजेंसी यानी गंभीर आपातकाल है, ये कहना है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। दी स्टेट्समैन में छपी एक खबर के अनुसार उन्होंने इसे तुरंत फुरंत में लागू किया गया कदम बताया है और कहा है कि ये इमरजेंसी से भी बड़ा और खतरनाक कदम है। इधर जनसत्ता के पहले पन्ने पर छपी खबर के अनुसार कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियां भी जीएसटी के लिए बुलाई गई संसद की विशेष बैठक का बहिष्कार करने पर विचार कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये बिना पूरी तैयारी के लिया गया फैसला है जिससे व्यापारियों को नुकसान होगा और अफरा तफरी मचेगी। अखबार के अनुसार कांग्रेस का मानना है कि जीएसटी लागू होने के शुरुआती महीनों में देश में छोटे और मझोले कारोबारियों का व्यापार प्रभावित होगा और महंगाई बढ़ने की भी आशंका है। एक खबर बता दूं, महाराजा अब प्राइवेट हो जाएंगे, इस हेडिंग के साथ हिंदुस्तान टाइम्स के पहले पन्ने पर एयर इंडिया के निजीकरण की खबर छपी है। अखबार का कहना
है कि कोई राजा प्राइवेट होने जा
रहा है। फिलहाल तो एयर इंडिया की ही बात हो रही है। हिंदुस्तान टाइम्स कहता है कि कैबिनेट ने एयर इंडिया और इसकी 5 सब्सिडियरी कंपनियों के निजीकरण की इजाज़त दे दी है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के अनुसार जुनैद की हत्या के मामले में हरियाणा रेलवे पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा है। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक 50 साल के व्यक्ति हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं, दिल्ली सरकार में काम करते हैं, जबकि बाकी 3 बल्लभगढ़ की फैक्ट्रियों में काम करने वाले युवा हैं। इन 4 लोगों ने जुनैद के साथ मारपिटाई और हिंसा करने की बात स्वीकार की है, लेकिन इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने चाकू से हमला किया था।
बहुत बहुत शुक्रिया मानसी आपका। और अब समय है एक विशेष रिपोर्ट का। भूमंडलीकरण और उपभोक्तावाद का सबसे ज्यादा असर इंसानी रिश्तों पर पड़ा है। इन्हीं बदलते हुए हालात का दंश झेल रहे हैं बुजुर्ग, जिनको समाज में कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। दिल्ली में अपने परिवारों से ठुकराए गए लोग आश्रम में मौजूद हैं, जहाँ पहुंचे हमारे संवाददाता सलमान रावी।
दिल्ली शहर के किसी कोने में बुजुर्ग महिलाओं का ये समूह भजन गाकर अपने गम को सहने की हिम्मत की कामना कर रहा है। ये वो लोग हैं जिन्हें अपनों ने ठुकराया है, यानी ये बुजुर्ग महिलाएं वो हैं जो अपनी औलादों के जुल्म सितम से तंग आकर अब घर से दूर किसी आश्रम में पनाह लिए हैं। स्नेहलता की उम्र 70 साल के लगभग की होने वाली है। अब उनकी आंखें कमजोर हो गई हैं और शरीर भी। ऐसे में जब उन्हें घर पर ही देखभाल की जरूरत है, स्नेहलता को घर पर हो रहे जुल्म का शिकार होना पड़ रहा है। ये जुल्म कोई और नहीं बल्कि वो लोग कर रहे हैं जिनसे उनका खून का रिश्ता है। तंग आकर स्नेहलता ने पास के ही एक वृद्धाश्रम में सहारा लिया है।
तो जा कहाँ माँ बाप, मुश्किल तो ये है, माँ बाप जाए कहाँ। और फिर इस उम्र माँ के तो देखो ना तो आँखें रहती हैं, खाने पीने के दांत भी नहीं रहते। अब तो यही आस लगावे परमात्मा से, हर नौजवान को ऐसी शिक्षा दे भगवान, अब जो ये कहे माँ तू कैसी है, अब तुझे क्या चाहिए, ऐसे बच्चे हों।
सामाजिक संगठन हेल्प एज इंडिया के सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार के मामलों में हैदराबाद सबसे ज्यादा कुख्यात है। दिल्ली में भी हालात बहुत बेहतर नहीं है। यहाँ बुजुर्गों के साथ बुरे व्यवहार के मामलों में सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारियों पर आरोप लगे हैं। मगर जमीनी हकीकत बताती है कि दुर्व्यवहार के मामलों में उनके परिवार के लोग भी कम दोषी नहीं हैं। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास बसेरे में मेरी मुलाकात बीना देवी से हुई, जिन्हें यहाँ के लोग बीना अम्मा के नाम से पुकारते हैं।
मैं एक तो बीमार पड़ जाओ तो कोई एक लोटा पानी नहीं देने वाला है, अस्पताल जाना है, दवा ववा लेने जाना है, तो अकेले की असली प्रॉब्लम ये है।
आपके रिश्तेदार कभी पूछने देखने आए कि
नहीं? कोई नहीं आया, दुश्मन है, हमें पा जाएंगे तो मार देंगे।
स्नेहलता और बीना अम्मा जैसे कई बुजुर्ग हैं जिन्हें अपनों ने ठुकराया है। इनमें से एक जसमती भी हैं जो दिल्ली के गोकुलपुरी के इलाके में रहती हैं।
बच्चे हैं मेरे पे 5, तो एक तो खत्म हो गया, उसके बच्चे हैं, बहू है उसकी, और 3 लड़की है मेरे पे, 5 बच्चे शादीशुदा है। पोते पोती अपने अपने गैर अपने माँ बाप के साथ, हाँ कर लेते हैं, बात करने आई तो कर ली, नहीं करने तो देखिए सही बोल लिया नहीं कि सही क्या है।
समाज सेवी संतोष शर्मा कहती हैं कि जिन बुजुर्गों से मेरी बात हो रही है वो खुलकर कुछ नहीं बताना चाहते। ये बुजुर्ग अंदर अंदर ही घुट घुट कर जीने पर मजबूर हैं।
तो पता है कि ये मकान हमारे माँ बाप ने बनाया है तो इस प्रॉपर्टी में हमारा अधिकार है, पर हमें बुजुर्गों की सेवा करनी है, ये कर्तव्य हमारा है, ये उनको नहीं पता। सबसे बड़ी बात क्या है कि वो आजकल मानसिक रूप से इतने विकृत हैं कि उनका जो खुशी के दो पल उन्होंने सोचे थे कि जीवन में हमें कभी मिलेंगे बुढ़ापे में, वो उनसे बिल्कुल छीन चुके हैं। समय पर उनको भोजन नहीं मिलता, कहीं आने जाने में वो समर्थ नहीं रहते, बोलने चालने वाला उनसे घर में कोई नहीं रहता, वो अकेले पड़े रहते हैं, उनका अकेलापन ही उनका सबसे बड़े दुख का कारण।
हालांकि दिल्ली पुलिस ने बुजुर्गों के लिए एक हेल्पलाइन चला रखी है जिसका नेतृत्व डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस करते हैं, मगर इस हेल्पलाइन का इस्तेमाल सिर्फ मध्यवर्ग के लोग ही कर पाते हैं जो पढ़े लिखे हैं। जो समाज के निचले तबके से संबंध रखने वाले बुजुर्ग हैं उनकी पहुंच ना तो इंटरनेट तक है और ना ही फोन तक। जहां तक रही बात परिवार के लोगों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार की, तो इन बुजुर्गों में अब भी इतनी गैरत है कि वो सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करते हैं। वो सारे जुल्म सितम सहने के बावजूद कभी अपनों की शिकायत करने आगे नहीं आते। सलमान रावी, BBC दिल्ली।
और अब चर्चा खेल की। महिला विश्व कप में आज भारतीय टीम का मुकाबला वेस्टइंडीज से है। क्या है भारत की उम्मीदें इस मैच से? हमारे सहयोगी विदित मेहरा ने बात की पूर्व क्रिकेटर मदन लाल से।
आज 29 तारीख है और आज ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप में इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम भिड़ेगी वेस्ट इंडीज़ वुमेन क्रिकेट टीम के साथ। अभी बड़े आसानी से वो इंग्लैंड से जीत गई, उनका पहला मैच था। तो आज के मैच में भारतीय टीम के क्या आसार हैं, इस पर हमारे साथ बात कर रहे हैं फॉर्मर क्रिकेटर और फॉर्मर कोच मदन लाल साहब। वेस्ट इंडीज़ को अगर देखा जाए तो इतनी ख़ास टीम नहीं है वो इंग्लैंड के मुकाबले, तो आपको लगता है ये काफ़ी आसान मुकाबला होगा इंडियन टीम के लिए?
देखिए, आसान मुकाबला तो कोई भी नहीं होता, पर लास्ट टाइम वेस्ट इंडीज ने इंडियन वुमन को हराया था, ये मेरे को याद है, क्योंकि उन्होंने चैंपियनशिप भी जीती थी। पर लास्ट मैच जो इंडिया जीती है वो बहुत ही अच्छा मैच जीती है, 287 मेरे ख्याल उन्होंने बनाए थे और इंग्लैंड के खिलाफ, और उन्होंने मेरे ख्याल 35 रन से ये मैच जीता था। तो उनके आत्मविश्वास जो है काफी बड़ा होगा और अच्छा खेल रही है तो जीतने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं।
और मिताली राज सर, उन्होंने लगातार 7 मैचों में हाफ सेंचुरी मारी है, तो आपको लगता है कि पॉजिटिव इफेक्ट टीम पर पड़ेगा इसका?
नहीं, देखिए, मिताली राज जो प्लेयर जो कंटिन्यू रन बना रहे होते हैं उनका कॉन्फिडेंस तो रहता ही है, और दूसरी टीम के ऊपर भी काफी इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये पड़ता है क्योंकि एक अच्छा फॉर्म में चलने वाला खिलाड़ी और वो रन बनाता चला जाए तो टीम के ऊपर टीम के लिए काफी अच्छा रहता है, क्योंकि आपको एक विश्वास होता है कि हाँ ये जाके रन बना देगा, उसके इर्द गिर्द जो है टीम खेलती रहती है।
तो आज मुकाबला है भारत और वेस्टइंडीज की महिला टीमों के बीच, और अब हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के समाप्ति की ओर। सुनिए प्रमुख समाचार।
BBC समाचार। कर्ज में डूबी एयर इंडिया के विनिवेश के प्रस्ताव को सैद्धांतिक तौर पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। देश के भीतर आने वाले उड़ानों के लिए अमेरिका कड़े सुरक्षा उपाय लागू करने जा रहा है। गृह मंत्री जॉन केली ने कहा है कि कड़े कदम उठाना जरूरी है क्योंकि अमेरिका के दुश्मन लगातार विमानों पर हमले करने के तरीके खोज रहे हैं। वेनेजुएला में सुरक्षा बलों का कहना है कि वो पुलिस अधिकारी की तलाश कर रहे हैं जिन्होंने मंगलवार को हेलीकॉप्टर से सरकारी इमारतों के ऊपर ग्रेनेड फेंके थे। बजट में कटौती के कारण ब्राजील के अधिकारियों ने पासपोर्ट जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। लीबिया से मिल रही खबरों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों को ले जा रहे एक काफिले पर बंदूकधारियों ने हमला किया है। इजराइल के कब्जे वाले गोल्डन گولن ہائٹس علاقے میں مورٹر بم گرنے کے بعد لگاتار تیسرے دن اسرائیل نے سیریائی سرکار پر حملہ کرنا جاری رکھا ہے۔ بی بی سی سماچار۔
اس کے ساتھ ہی نمسکار بھارت کا یہ انک یہیں سماپت ہوتا ہے۔ اسٹوڈیو سنبھال رہے تھے شاکر عالم، پنکج پریادرشی اور مانسی داش کو انمتی دیجیے۔ نمسکار۔